ये आकाशवाणी है, अब आप रवि कपूर से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी आज ब्राजील में राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर भारत का पक्ष रखेंगे। श्री मोदी के G20 शिखर सम्मेलन से इतर कई नेताओं से मिलने की भी उम्मीद है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के बीच अबुजा में राष्ट्रपति भवन में बातचीत हुई। दोनों नेताओं की बैठक के बाद प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में संबंधों को और भी आगे बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति टिनुबू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत नाइजीरिया के साथ अपनी साझेदारी को उच्च प्राथमिकता देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया। श्री मोदी ने इस सम्मान को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए कहा कि ये सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि भारत की जनता का भी सम्मान है। श्री मोदी की ये पहली नाइजीरिया यात्रा है। दोनों देशों के बीच 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते सांस्कृतिक आदान प्रदान, सीमा शुल्क सहयोग और सर्वेक्षण सहयोग से संबंधित हैं। अपने दौरे के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 19 से 21 नवंबर तक गुयाना की राजकीय यात्रा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सूत्रों के अनुसार श्री शाह आज इस मुद्दे पर विस्तृत बैठक करेंगे। गृह मंत्रालय ने शनिवार को बताया था कि मणिपुर में सुरक्षा बलों को शांति बहाली के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि दोनों समुदायों के बीच हिंसा में कई लोगों की मृत्यु हो गई और सार्वजनिक व्यवस्था बाधित हुई। मंत्रालय ने कहा है कि हिंसक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच मणिपुर में नेशनल पीपुल्स पार्टी ने बीरेन सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोनराड संगमा ने भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को इसकी जानकारी दे दी है। श्री संगमा ने अपने पत्र में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए कहा है कि बीरेन सिंह सरकार मौजूदा संकट का समाधान करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में नाकाम रही है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और महाराष्ट्र में एकल चरण में मतदान के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। दोनों राज्यों में बुधवार को मतदान होगा। झारखंड में मतदान के दूसरे चरण में 38 सीटों पर जबकि महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर मतदान होगा। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। इसे देखते हुए आज सुबह 8 बजे से दिल्ली में ग्रैप स्टेज 4 लागू कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत दिल्ली में दूसरे राज्यों से भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने वाले भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति रहेगी। सभी CNG, इलेक्ट्रिक और BS6 डीजल ट्रकों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ये निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM की बैठक में लिया गया। दिल्ली सरकार ने कक्षा 10 और 12 को छोड़कर सभी छात्रों के लिए वास्तविक कक्षाएं बंद करने की घोषणा की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगले आदेश तक सभी स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय GHQ और गुप्ता क्लिंसकी इंडिया इंस्टीट्यूट के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान श्री प्रधान ने GHQ और प्रमुख भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। बिहार में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत ने अंतिम ग्रुप स्टेज मैच में जापान को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।